कल्प के परिवर्तन का समय और उस परम शिल्पी का भारत की भूमि पर अवतरण, जैसे जैसे परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे वह शिल्पकार अपने सिद्ध हस्तों से चैतन्य मूर्तियों को सजाता गया। उस प्राण प्रिय बाप दादा की एक अनुपम कृति है, आदरणीय शीलू दीदी जी। दीदी जी, हम सभी ब्रह्मावत्स आपका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मधुर स्वर, कुशाग्र बुद्धि एवं तार्किक बुद्धि की धनी आदरणीय दीदी जी के जन्मोदय से सन 1948 में मुंबई की धरा धन्य हो गई। बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक रुचि और आध्यात्मिकता की गहराई में जाने की आपकी प्रवृत्ति रही है। आपने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही बाबा को अपना बना लिया और लौकिक अध्ययन जारी रखा। बाद में आपने स्नातक पूरा करके अपने आप को पूर्ण रूपेण बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। कई भाषाओं में धारा प्रवाह अपना वक्तव्य रखने में निपुण दीदी जी की सेवाओं को देश विदेश में सराहा गया। वर्तमान समय आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और बाबा ने आपको हर की पौड़ी का टाइटल दिया है, वो हम सुनते हैं। बहुत अच्छा अनुभव आपका और आपके कंठ में वरदान है बाबा का कि सरस्वती का वास है। हम सभी योग की कमेंट्रीज सुन करके योग लगाना सीखे हैं, वो आदरणीय शीलू दीदी जी की ही प्रेरणा है, सेवा है हम सबके लिए। तो आज हम सभी आपके वचनामृत द्वारा ज्ञान स्नान करेंगे। विषय है दुआएं दो दुआएं लो। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहने बाबा मिलन मनाने के लिए मधुबन आए हैं और कल आप सभी ने बाबा की मुरली सुनी होगी। बहुत सुंदर महावाक्य भगवान ने हम बच्चों के लिए उचारे। हालांकि यह मुरली 20 साल पहले बाबा ने बजाई थी, सुनाई थी, 15/12/2004। तब दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, कई सारी दादियां सब साकार में थी। और सचमुच हम देखते हैं जो भी बाबा की मुरली चलती है, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, वो कैसे प्रासंगिक होती है, समय अनुसार वो कितनी उपयोगी होती है। समय की मांग अनुसार उसका अगर अनुभव करें हम, तो संपन्न बनना, संपूर्ण बनना बहुत सहज हो जाएगा। तो कल बाबा ने सबसे पहले हमें क्या बनाया? बेफिक्र बादशाह। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो, जो समझते हम हैं बेफिक्र बादशाह, हाथ उठाएं। सारे ही हैं, बाबा ने कल तो हाथ उठवाया। बेफिक्र बादशाह जो होता है वो डबल लाइट भी होता है। इसीलिए बाबा ने यही कहा कि बच्चे अपना बोझ बाबा को दे दो। बोझ क्यों उठा के घूम रहे हो? और कई बार बाबा बताते हैं कि बोझ तब लगता है जब मेरा समझते हो। तो तो मेरा को तेरे में परिवर्तन करो, तो चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अभी भी टॉपिक सुना ना, साथी और साक्षी। बाबा को साथी बनाओ और बाकी सब कुछ साक्षी हो करके देखो, तो बोझ तब महसूस होता है जब मेरा बनाता है। तो बाबा कहते हैं बस म को त में चेंज करो, बस सब बाबा का है। गाते तो है ना, भक्ति में तो गाते ही आई ऐसे, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कुछ भी प्राप्ति होती है तो क्या कहते हैं, भगवान ने दिया, बच्चा पैदा हुआ भगवान ने दिया। तो ये कितनी बड़ी सोच है कि भगवान ने दिया, इसका मतलब भगवान का है, मेरे पास तो केवल अमानत है। अगर मेरा समझेंगे तो अमानत में ख्यानत पड़ जाएगी। इसीलिए बेफिक्र बादशाह बनने के लिए मेरे को तेरे में बदल दो, और बेफिक्र होकर के बाबा की सेवा करो। और कल बाबा ने कहा सबको दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं लो। उसके लिए सेवा करेंगे तब तो दुआएं दे सकेंगे ना। लेकिन फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेवा करने लिए पहले खुद में जमा करना पड़ेगा। अगर मैं दान करना चाहती हूँ पर मेरे पास ही नहीं है तो मैं कैसे दान कर सकूँगी। इच्छा है मैं कोई दान करूँ, लेकिन दान करने लिए वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा ने इतने सारे खजाने दिए, कितने खजाने, गिनती करते जाओ, खजाने ही खजाने हर वक्त हमें मिलते हैं। सबसे पहले बाबा ने क्या कहा, समय का खजाना। उसके पहले बाबा ने कहा संकल्पों का खजाना। तो संकल्प और समय, ये दोनों बहुत बड़े खजाने हैं। ज्ञान गुण शक्तियां वो तो है ही है, लेकिन समय और संकल्प ये हमारे दो बड़े खजाने हैं जिनको हमें जमा करना है। और ये दोनों अगर जमा होंगे तब ही हम सेवा कर सकेंगे, दान कर सकेंगे और फिर सबकी दुआएं ले सकेंगे। तो इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि संकल्पों का जो खजाना है वो कितना कीमती है, और हम अपना ये खजाना कितना गंवाते रहते हैं। वैसे किसके पास धन होता है तो सोच समझ करके भी वो धन देता है, ऐसे ही नहीं देता है। तो संकल्पों का खजाना क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि जैसा आपका संकल्प होगा वैसी आपकी स्थिति बनेगी, और जैसी आपकी स्थिति होगी वैसे ही आपका जीवन घड़ेगा घड़ेगा। वो अगर स्थिति हमारी अच्छी नहीं है तो जीवन भी कैसा है। तो जीवन हमारा अमूल्य है, हम ये मानते हैं, मानव जीवन बहुत अमूल्य है। परंतु इस मानव जीवन में जो अमूल्य है उसमें क्या अमूल्य बात है, वो है हमारे संकल्प, वो है हमारा समय। इनको हम कितना सफल करते हैं इस पर सारा निर्भर है हमारे आगे का, आगे के भाग्य का। इसीलिए अगर ये संकल्प और हमारा समय श्रेष्ठ बातों में जाता है तो ऑटोमेटिकली ये समय सफल हुआ, और ये सफल जो हमने संकल्प और समय किया तो ऑटोमेटिकली हम दान भी कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान गुण और शक्तियां ये हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी। आज भी बाबा ने कहा जो आप बच्चे सुबह सुनते हो उसको उसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सवेरे मुरली सुनी फिर उसके बाद उसका मनन कितना किया, चिंतन कितना किया, मंथन कितना किया, फिर तब तो उसका वर्णन भी कर सकेंगे। अगर मनन मंथन चिंतन ये सब किया ही नहीं और बस मुरली सुनी, फिर एक घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद भी पूछ लेंगे क्या सुना, हम कहेंगे भूल गया भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसका मनन नहीं किया। मनन किसको कहेंगे? मनन का मतलब क्या है? मनन है, दूसरा चिंतन है, तीसरा मंथन है। बाबा तीनों शब्द कहते हैं। तो मनन का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं जैसे हम मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं तो फिर उसके बाद हाँ बहन जी जो क्लास कराते हैं वो फिर थोड़ा रिवाइज कराते हैं, आज बाबा ने क्या कहा। तो रिवाइज भी तब होगा जब पहले मनन होगा, वो पॉइंट्स मनन होगी आज बाबा ने क्या कहा। फिर मनन करने के बाद चिंतन होता है, उसके उसके बारे में हम ज्यादा हम सोचते हैं और क्या बाबा ने जो बताया उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, ये चिंतन हो गया। फिर उसके बाद मंथन होता है। मंथन किसको कहेंगे? जब उसकी गहराई में गए, जैसे सागर की गहराई में जाते हैं तो हीरे मोती माणिक निकल आते हैं, वो उनके अंदर समाये होते हैं। तो बाबा कहते हैं मंथन करने से अनेक रत्न निकलेंगे, अनेक नई नई पॉइंट्स निकलेगी और वो नई नई पॉइंट्स जैसे हमारी बुद्धि में बैठी हमारी खुशी बढ़ेगी। जैसे धन और मिल गया, खजाना मिल गया, तो संकल्पों का भी खजाना है और उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको समय निकालना पड़ेगा। समय निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि काफी समय व्यर्थ जाता है। कई कहते हैं ना कि क्या करे बहन जी मेरे पास समय नहीं है, और बाबा कहते ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास समय ना हो। आपको बाबा ने एक बार कहा था भोजन खाने के लिए समय है, नींद करने लिए समय है, अखबार पढ़ने लिए, टीवी देखने लिए, गपशप करने लिए, उसके लिए समय है। और फिर जब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कहेंगे समय नहीं है। तो समय कहाँ जाता है हमारा? अधिकतर चलो बाबा कहते विकारों के वश नहीं है हमारे कोई भी संकल्प और समय, मोटे मोटे विकार तो चले गए। लेकिन जो बाबा ने कहा ना कल सर कल भी का छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उसके पोतरे दोतरे हैं और पोतरे दोतरे तो कई बार मोह हो जाता है माताओं का पोतरे दोतरों में, तो वंश और अंश इन विकारों के वो तो सहज जाते नहीं है। तो ईर्ष्या द्वेष कभी कभी नफरत, कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चिंताएं, ये सारी जो भी मन में आती है ये सब विकारों के अंश है। और इन विकारों के अंश के कारण भी हमारा समय कितना व्यर्थ जाता है। फिर मन में प्रश्न उठते ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, वो होता तो अच्छा होता, ऐसा क्या ड्रामा बना जो हमारा ये हुआ, इस प्रकार का ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो ड्रामा को ही दोष देंगे, दूसरों को दोष देंगे, खुद को भी दोष देंगे, अब उसमें भी कितना समय चला गया, संकल्प चले गए। तो बाबा कहते हैं कि इसको कैसे सफल करेंगे? तब बाबा ने कहा बस बिंदु लगाओ, ये ड्रामा का बिंदु हमको इतना हल्का कर देता है कि कोई नई बात तो है नहीं, कोई नई बात नहीं है और इसके पीछे कोई कल्याण होगा। तो ये जब बुद्धि में आता है तो हमारे संकल्प और हमारा समय बच जाता है, क्योंकि ब्रेक लगा दी। तो ये जो हमने बचत किया, इसको कैसे सफल करेंगे? बाबा कहते हैं आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हो, इससे आपको दुआएं मिलेगी। दुआएं देना भी है, दुआएं लेना भी है। इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि हम दुआएं देंगे कैसे और फिर लेंगे कैसे। दुआएं तब दे सकेंगे जब आप किसी की सेवा करेंगे। किसी प्यासी को समझो पानी भी दिया, वो कहेगा ओ थैंक यू, उसका चित शांत हुआ, बहुत प्यासा था, आपने उनको पानी ऑफर किया और उसका चित ठंडा हुआ, तो आपको कहेगा थैंक यू, धन्यवाद। ये धन्यवाद जो आपको मिला, ये भी एक दुआ का ही रूप है, दुआ का ही रूप है धन्यवाद करना। तो क्या सचमुच हमें जो कुछ मिला उसके लिए हम धन्यवाद भी किसको करते हैं या नहीं करते हैं? भारत में ये बहुत सारी रस्म नहीं है, विदेशों में तो ये बहुत रस्म है। कुछ भी ऐसे कोई हाथ भी लगे ना सॉरी, हाँ किसी ने दिया धन्यवाद। भारत में तो हम समझते ये तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ये तो है ही है, हाँ मिल गया ठीक है पी लिया हो गया, हाँ थोड़ी किसी को लग गया सॉरी भी नहीं करेंगे सीधा चले जाएंगे। लेकिन विदेशों में मैंने देखा ये बहुत अच्छा संस्कार है और बच्चों को सिखाया भी जाता है, भारत में भी है, लेकिन कई बार हम समझते बस ये तो साधारण बात है ना। लेकिन हमने किसकी सेवा की और उसका धन्यवाद मिला, ये भी बहुत बड़ी दुआएं मिली। पर दुआएं मांगी नहीं जाती है, कई लोग दुआ मांगते हैं, कहेंगे दुआ करो हम पर, इसमें भी फिर तीन शब्द आते हैं, एक है दुआ, दूसरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद मांगते हैं, हमको आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। एक बार एक भाई था, हाँ उसने कहा कि दीदी आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, तो मैंने ऐसे किया ठीक है जैसे वरदानी हाथ, तो उसने क्या किया मेरा वो हाथ लेकर अपने सिर पर रख दिया ताकि आशीर्वाद हमको हो, क्योंकि उसने सोचा क्योंकि नीचे झुक गया और ऐसे किया भाई मेरे सिर पर हाथ रखो, तो मैंने ऐसे किया, हाँ तो सिर पर तो हाथ नहीं रखा, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने सिर पर रखवा दिया तो भाई आशीर्वाद ही। तो आशीर्वाद या दुआएं या वरदान, ये भी मांगा नहीं जाता है, अपने आप मिलता है हमारी सेवा के फलस्वरूप। आप हमको कोई वरदान दो, अभी कोई हमें प्राप्ति हुई नहीं और हम ऐसे वरदान कैसे दें, हमें पता ही नहीं है कौन है, तो चलो उस हिसाब से मांगा भी वरदान तो हम कहेंगे भाई खुश रहो, ये भी बहुत बड़ा वरदान है, खुश रहो आबाद रहो, तो ये भी एक वरदान है या ये भी एक दुआ करना है। तो दुआ तो हल्के रूप में होती है पर आशीर्वाद उसका बड़ा रूप है। आशीर्वाद में क्या कहेंगे आयुष्मान भव, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, या कहेंगे कि हाँ आप स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ रहो, तो ये भी एक आशीर्वाद है। पर वरदान तो भगवान ही देता है, क्योंकि जो भरपूर होता है वही वरदान दे सकता है, दुआ तो कोई भी कर सकता है। उस समय थोड़ी सी प्राप्ति हुई, अंचली भरी केवल प्राप्ति हुई, तो भी दुआ करेगा। एक भिखारी भूखा है, उस भूखे को आपने रोटी दो रोटी का टुकड़ा दिया, वो कहेगा ओ आप मेरा पेट भर गया, तो भी आपको दुआएं देगा। कोई रास्ते पर चल रहा उसको उसको दिखाई कम देता है, उसका हाथ पकड़ करके उसको रास्ता क्रॉस कराया तो भी आपको दुआ देगा। मानो आपने उसके लिए कुछ किया, आपने उनको समय दिया। कोई बहुत परेशान है और वो अपनी परेशानी बताना चाहता है और आपको बताना चाहता है, तो आपको अगर आपने उनको समय दिया, सुना, ये भी एक बहुत बड़ा आपने कार्य किया और उसकी आपको दुआएं मिली, आप उसका मन हल्का हो गया, तो उससे भी दुआ मिलती है क्योंकि आपने समय दिया। तो समय और संकल्प ये तो मदद करते ही हैं दुआ देने में, आशीर्वाद देने में, वरदान देने में। लेकिन हर समय ये हमारे अंदर में एक प्रेरणा आए कि मुझे कुछ देना है। अभी तो बाबा कहते हैं जो देता है वो दाता है, जो देता है वो देवता है। तो मुझे कुछ देना है। जो बाबा कहते हैं मनसा भी सेवा करो, वाणी से भी सेवा करो, कर्मों से भी सेवा करो। तो ये कैसे होगा? जब पहले मन से हम किसी के लिए शुभ सोचेंगे, दुआ देना माना उनके लिए शुभ सोचना, जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, ये दोनों दुआ का ही रूप है। कई इस अंतर को भी कम समझते, एक होता है
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर सबके लिए शुभ भावना हो, सबके प्रति शुभ कामना करो। तो दोनों में क्या अंतर है? शुभ भावना और शुभ कामना, ये भी दुआ का ही रूप है। शुभ भावना माना उनकी अच्छाई को देखना, उनके गुणों को देखना, क्योंकि अगर अवगुणों को देखेंगे तो आप उनके प्रति शुभ भावना नहीं रख सकेंगे, फिर क्या कहेंगे, तो है ही ऐसा, तो ये तो अशुभ भावना हो गई ना, ये तो है ही ऐसा, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, ये तो कभी नहीं बदलेगा। अब ये तो बहुत बड़ी अशुभ भावना है, क्यों नहीं बदले, क्यों नहीं बदल सकता है, क्यों नहीं हाँ अच्छा हो सकता है, ऐसी क्या बात है कि कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है। आत्मा तो अपने असली रूप में तो बहुत अच्छी है, बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, सारे गुण है उसमें अपने अनादि और आदि रूप में। ये तो देह अभिमान के कारण वो गुण हम भुला चुके हैं, तो इसीलिए किसी के प्रति भी अगर हम यही सोचते ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये कितनी बड़ी अशुभ भावना है, कितनी बड़ी अशुभ कामना है ये, क्योंकि कभी बदलेगा नहीं माना ये भविष्य के लिए कहते, तो कभी बदलेगा नहीं। इतनी ऐसी ऐसी गलत बना बुरी बातें भी कह देते, ये तो जैसे कुत्ते का पूंछ कभी नहीं सीधा होता, ये भी कभी नहीं सीधा होगा, ऐसा ही टेढ़ा के टेढ़ा ही रहेगा, यहाँ तक भी बोल देते हैं। अब ये कितनी बुरी भावना है उसके प्रति, या अशुभ कामना भी है। तो भावना माना उसके लिए, शुभ भावना माना उसके लिए अच्छी सोच, किसी के प्रति भी अच्छी सोच हो, ये भी एक दुआ है, जिसके आधार से वो क्यों नहीं बदल सकता है, जरूर बदलेगा। और फिर आगे के लिए ये बदल जाएगा, जरूर बदलेगा, ये है शुभ कामना और ये है दुआ देना। अगर हम यही सोचेंगे ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो कभी सीधा नहीं होगा, ये तो कभी सुधरेगा नहीं, तो जैसे हमने बद्दुआ दे दी उनको। बाबा तो कहते अब कार्यों पर भी उपकार करना है, स्वयं बदल कर दूसरे को बदलना है, बदलना है, बदला नहीं लेना है। अब ये कितनी शब्द, कितने सुंदर सुंदर शब्द है, ये बदलना है और पर बदला नहीं लेना है। और हम सोचते हैं कि हाँ ये तो है ही बुरा, या फिर कहेंगे या तो छोड़ दो, या तो ये बुरा है तो इसके साथ बुराई करो, उसका बुराई करो इसके साथ, क्योंकि ये बुरा है तो इसको तो बदला कहेंगे ना, बदला दे लेना। लेकिन कोई कैसा भी है, मुझे न बदला लेना है न मुझे उसके लिए बुरा सोचना है। कल भी बाबा ने कहा कोई अगर बद्दुआ भी देता है तो भी आप वो बद्दुआ लो नहीं, बद्दुआ दूसरा दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो पर वो दे रहा है, पर आप नहीं लो, है ना? आप देखते होंगे ना ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो तेरा मुंह काला माना बद्दुआ दी ना, अब वो बुरी नजर रखी पर आपने उसको उसको बद्दुआ क्या दी, तेरा मुंह काला। तो हमने एक ट्रक के पीछे ये भी पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला तेरा भी हो भला, माना ये दुआ हो गई ना कि तुम्हारा भला हो और तुम्हारी बुरी नजर खत्म हो जाए। तो बुरी नजर के वाले के लिए कहेंगे तो इसकी तो नजर बहुत बुरी है, हाँ इसके नजदीक में नहीं जाना है, परंतु नजदीक भले न जाओ, हो सकता है आपके ऊपर उसकी बुरी नजर लग जाए, परंतु उसके लिए तो बुरा नहीं सोचो ना। हाँ तेरा मुंह काला, ये तेरा मुंह काला कहना माना उसके लिए बुरा सोचा, पर बुरी नजर वाले तेरा भी वो भला माना तुम सुधर जाओ, तुम्हारे लिए हम शुभ शुभ भावना रखते हैं कि तुम सुधर सकते हो, और कोई ऐसा बुरा है ही नहीं चाहे कितना भी कोई हो, क्योंकि हर एक भगवान का बच्चा है। तो इसीलिए कोई बद्दुआ दे पर हम उसके लिए दुआ करें, तो वो बद्दुआ हमको लगेगी नहीं, पर हमने ही उसके लिए बद्दुआ की तो वो पहले तो बद्दुआ हमको लगेगी। वैसे कहा जाता है जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद गिर जाता है। हो सकता है खड्डा खोदा और वो तो गिरा, पर एक दिन वो भी गिरेगा जरूर, क्योंकि उसने खड्डा दूसरे के लिए खोदा पर खुद गिरा। हो सकता है दूसरा भी गिरे, उसका कोई हिसाब किताब होगा, तो दूसरा जिसके लिए खोदा वो भी गिरेगा। पर ये न भूले कि हमने उसके लिए खोदा है तो हम नहीं गिरेंगे, हम भी गिरेंगे, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो ये कर्मों की गुह्य गति बाबा हमको जो समझाते हैं उसमें कितने राज भरे हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। अब उसके लिए तो क्या, अपने लिए बुरा नहीं सोचना है। अपने लिए भी कई बार हम बुरा सोचते हैं, और कई बार अपने लिए इतना अच्छा सोचते हैं और वो नजर लग जाती है, इतना अच्छा। हाँ, किसी ने एक बार कहा, मुझे तो कभी बीमारी नहीं होती है, मैंने कभी एक गोली तक नहीं खाई है, कभी मुझे बुखार भी नहीं हुआ है। बस ये कहा, दूसरे दिन उसको बुखार हो गया। अपनी बुरी नजर, अपनी नजर लग गई उसको। इसीलिए अपना अभिमान भी नहीं दिखाना है। जितना हम नम्र होंगे उतना हमको किसी की ना नजर लगेगी, ना हम किसी पर कोई किसी की को हम बुरी नजर से देखेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, स्वमान में रहो और सम्मान दो। अगर हम स्वमान में है तो मुझे अपमान भी नहीं लगेगा। कई पूछते स्वमान और अपमान में अंतर क्या है। स्वमान और अभिमान में अंतर क्या है। स्वमान भी तो एक अभिमान ही तो है, इसीलिए दुनिया में शब्द स्वमान नहीं कहते, स्वाभिमान कह देते हैं। पर स्वमान और अभिमान में बहुत अंतर है। बाबा जो हमें टाइटल्स देते हैं वो हमारा स्वमान है, लेकिन जो दुनिया में हमें कुछ प्राप्ति हमने की और उसका अभिमान चढ़ गया वो अलग चीज, वो फिर अभिमान हो जाता है। स्वमान कौन सा है जो बाबा ने हमें दिया है। बाबा ने कहा, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, ये मेरा स्वमान है। मेरा आत्मा का धर्म है ही शांति, मैं अशांत स्वरूप तो हूं ही नहीं, तो ये मेरा स्वमान है, ये मेरा सच्चा धर्म है। तो इसको हम स्वमान कहेंगे। कोई मेरी शांति भंग नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी कर ले मेरी शांति भंग नहीं हो सकती है, ये है स्वमान। तो उस स्वमान में सदा रहें ताकि मेरी शांति कोई भंग कर ही नहीं सकता है, इसी नशे में रहें। और अभिमान क्या है, मैं तो बहुत होशियार हूं और किसी ने मुझे कह दिया तुम तो बुद्धू हो, और मैं समझ रहा हूं मैं बहुत होशियार हूं और उसने कह दिया बुद्धू हो, तो मेरा मुझे लगता है मेरा अपमान हो गया। मैं इतना होशियार हूं और मुझे ये कहता है तुम बुद्धू हो, तो ये अपमान महसूस होगा। लेकिन अगर हम ये उस समय सोचें कि बाबा ने हमें कितना सुंदर स्वमान दिया है, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम ये हो वो हो, क्या नहीं बाबा हमें देते हैं वरदानों के रूप में, तीन तख्तधारी हो, तीन ताजधारी हो, तख्तधारी हो, जो बाबा हमें स्वमान देते उस समय वो स्वरूप में हम खुद को देखें, तो वो कुछ भी कहे, बाबा ने मुझे जिस रूप में देखा है वो रूप में अब अनुभव करूं। अब वो उसकी नजरों में कुछ भी हूं मैं, ठीक है वो जो समझना चाहता है सोच समझे भले, तो मुझे उसका वो अपमान महसूस नहीं करना है। किसी ने कह दिया तो मूर्ख हो, समझो मान लो मुझे किसी ने कह दिया तो मूर्ख हो, तुम बुद्धू हो, तुमको कुछ भी समझ नहीं आता है, और मैं समझती हूँ मैं तो बहुत होशियार हूँ, तो मैं फिर क्या करूंगी। मुझे उसने बुद्धू कहा, मूर्ख कहा तो मैं फिर नेले पर देला कह दूंगी। अच्छा तो मुझे मूर्ख कहते हो, तू महामूर्ख हो। उसने तो नेला फेंका और मैंने देला फेंका उसको हराने के लिए। लेकिन उसको महामूर्ख कहा इसका मतलब मैंने स्वीकार तो किया ना मैं मूर्ख हूं, नहीं? क्या समझते हो? उसने मुझे मूर्ख कहा और मैंने उसको महामूर्ख कहा तो इसका पहला मतलब क्या हुआ कि मैंने स्वीकार किया कि मैं मूर्ख हूं। तभी तो कहा ना तू महामूर्ख हो, नहीं तो क्यों कहती मैं महामूर्ख हूं। तो स्वीकार ही क्यों कर रहे हैं हम जो महामूर्ख कहना भी पड़े, स्वीकार ही नहीं करो। उसने कहा ठीक है, अब उसको कहेंगे भाई ठीक है ये तुम्हारी नजरों में चलो मैं कुछ भी हूं पर भगवान की नजरों में तो मैं बहुत ऊंचा हूं। अब ये है स्वमान। और उसने मुझे मूर्ख कहा, मुझे मेरा अभिमान है कि मैं तो मूर्ख नहीं हूं, तो मैं उस अभिमान वश मुझे अपमान तो लगेगा और फिर मैं उसको महामूर्ख कह दिया तो ये तो फिर और हमने अब और ही पाप चढ़ाया अपने ऊपर। और फिर वो तो फिर और तीसरी कोई गाली दे देगा, फिर मैं चौथी दूंगा। उसने तो केवल दो शब्द कहे या एक शब्द का, मैंने तो दो किए कहे, फिर उसने चार कहे, फिर मैंने आठ कहे, फिर उसने 16 कहे, फिर मैंने 32 कहे। आखिर क्या नतीजा होगा? क्या होगा नतीजा? डिबेट भी तो ऐसा ही होती है ना, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है। आजकल टीवी पर कितनी डिबेट आती है, हाँ उसने उसको काटा, उसको काटा, फिर उसने उसको काटा, बस एक दो को काटते ही रहते हैं। एक होती है डिबेट, उसको डिबेट कहते हैं जो एक दो को काटते हैं, और दूसरा होता है डायलॉग। इंग्लिश में डायलॉग शब्द भी है, संवाद। संवाद शब्द में क्या होता है, उसमें जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं उसी बात को, जोड़ते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, वो मिलता जाता है। और डिबेट है तो काटते जाते हैं। तो हमें डिबेट में नहीं जाना है। उसने कहा मैंने काटा, उसको स्वीकार करो, ठीक है। स्वीकार किया माना उस रूप में नहीं कि मैं सचमुच हूं, आप अपनी बात दो, ठीक है वो जो कह रहा है उसको कहने दो, पर मैं अपनी बात दूं जरूर। हम लोग जब इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितने सब धर्म वालों को बुलाते हैं। अब हर धर्म वाला अपनी अपनी बात कहता है, भले कहे अच्छा है ठीक है वो उसको मानता है, हम अपनी बात कहें। अगर हम उसको काटेंगे तो वो हमको काटेगा, वो अपनी बात को ऊंचा मानेगा और हम उसकी बात को नीचा करेंगे, और हम अपनी बात को ऊंचा करेंगे वो क्यों मानेगा हमारी बात, वो अपनी बात को मानेगा। इसीलिए हम उनको क्या क्या कहेंगे, ठीक है अच्छी बात है आप जो कहते हो लेकिन हम ये मानते हैं। तो आप उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हो और अपने आप को तो आप उस स्वमान में रखते ही हो क्योंकि ये आपकी मान्यता है। अब लोगों पर निर्भर है वो क्या क्या वो चाहते हैं, उस अनुसार वो स्वीकार करेंगे, वो लेंगे। अभी ORC में देखो कितना बड़ा सम्मेलन हुआ, संतों का सम्मेलन, हर एक ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने उसको उनको काटा नहीं। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों की कितनी महिमा की, कितनी महिमा की, एक एक के मुख से कितनी महिमा निकली। क्योंकि बाबा कहते सबको रिस्पेक्ट दो, कोई भी आए उनको रिस्पेक्ट दो, आप रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। हमारी प्रेम बहन थी देहरादून में, वो बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाती थी कि वो संतों के पास कैसे इतना सम्मान पाया उन्होंने। सब संत उसको बहुत मानते थे क्योंकि वो हरिद्वार में रह के कई संतों से मिली, और जहां जाती थी वो जो सुनाते थे वो सुनती थी, सुनती थी, सुनती थी, बहुत प्यार से सुनती थी। और जब वो सुना करके पूरा करते थे फिर ये अपना सुनाती थी, फिर अपना जो सुनाती थी फिर वो स्वीकार करते थे। और उन्होंने इनको बड़ा टाइटल दे दिया कि हम तो मंडलेश्वर है, चलो महामंडलेश्वर है, आप तो महा महा महामंडलेश्वर हो, यहां तक कह दिया। और इतना रिस्पेक्ट से मिलते थे उनसे, और जैसे उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी इनको भी इतनी रिस्पेक्ट देते थे। तो प्रेम बहन ने उसकी युक्ति बताई, क्योंकि बाबा ने उनको भेजा, हाँ वहाँ भेजा प्रेम बहन को संतों की सेवा करने लिए। तो बाबा ने इसको यही कहा, पहले उनको रिस्पेक्ट दो, आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपका भी सुनेंगे, इसलिए आपको उनको समय देना होगा। तो आप उनको समय देंगे, उनकी बातें सुनेंगे, धीरज रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बातें भी वो सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत धीरज चाहिए, उसके लिए बड़ी शांति चाहिए, उसके लिए थोड़ा समय देना होता है। और ये समय आपका व्यर्थ नहीं गया, ये सफल हुआ। कई कहते ये क्या बकवास करता है, छोड़ो इसको, ये नहीं। उनका अगर दिल जीतना है, उनकी भी दुआएं लेनी है, उनको दुआएं देनी होगी, तो समय भी तो देना होगा ना। वो आपको अपने से भी महान मानेंगे। तो इसीलिए जब बाबा कहते हैं दुआएं दो दुआएं लो, उसका बहुत गहरा अर्थ है कि कुछ भी हो जाए, कभी भी मेरे मुख से किसके लिए बद्दुआ ना निकले, कैसा भी व्यक्ति है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति बुरा सोच है या जो कुछ भी गलत सोच है और मेरे मुख से बद्दुआ निकल गई, ये तो कभी सुधरेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी दुआएं भी कभी नहीं हमें मिलेगी। और अंत में तो बाबा कहते आपकी दुआएं ही काम आएगी, दवा 20% काम आएगी, पर दुआएं आपको 80% मदद करेगी। बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी ऐसे ही कहती थी, बिल्कुल। दादी जी से पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, तो दादी बहुत सुंदर जवाब देती थी, बस जो बाबा कहते हैं बस मुझे वो ही करना है। फिर भी दादी से पूछ, दादी फिर भी आप पुरुषार्थ क्या करते हो, दादी कहती थी मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो फिर कहते थे, दादी आप कुछ भी नहीं सोचती हो वरना पुरुषार्थ क्या करते हो, फिर पूछते थे। तो दादी जी कहती थी बस आप सबकी दुआएं मुझे उड़ाती रहती है, ऐसे कहती थी दादी, आपकी दुआएं हमें जो मिलती ना वही हमको उड़ाती रहती है, और मैं निरसंकल्प रहती हूँ। और सचमुच दादी जी को देखते थे, इतनी बातें दादी के सामने आती थी, होती थी कितनी बातें, कितने सेंटर्स, कितनी बातें होगी, कितने विघ्न कहीं आए स्टूडेंट्स में, सेंटर्स की कितनी बातें होगी, लेकिन दादी जी इतनी निश्चिंत रहती थी। क्यों निश्चिंत रहती थी, एक तो बाबा को बोझ दे दिया देती थी। अखबार वालों ने एक बार दादी जी से पूछा कि आप इतनी बड़ी हेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, आपको नींद आती है, यहाँ तक पूछ लिया। तो दादी ने कहा क्यों नहीं नींद आएगी, मैं तो सारा बोझ बाबा को भगवान को दे देती हूँ, मैं तो कोई बोझ उठाती नहीं हूँ, क्योंकि उसका कार्य है, मेरा कार्य थोड़ी है, बाबा का कार्य है, भगवान का कार्य है। तभी बाबा ने कहा ना बोझ मुझे दे दो। और सचमुच हम दादी जी को देखते थे, हम दादी के सामने बैठते थे, रात को वो मुरली पढ़ती थी और हम जैसे रात्रि क्लास जैसे दादी के साथ करते थे, हाँ ना, एक छोटी गीता पाठशाला रात को, और दादी सुनती थी, सुनाती थी। फिर दादी हमको कहेगी आप पढ़ो, तो हम जैसे पढ़ने जाते थे रात के समय सोने के समय, और हम तो दादी सुनते सुनते एक मिनट में नींद आ गई। हम कहते थे बस पूरा करो दादी, अभी रेस्ट कर रहे हैं। इतनी इतनी सुंदर रूप से, हाँ एक मिनट में सब चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। एक बार मीडिया वालों ने पूछा दादी से, दादी आप इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करती हो, कितने आपके सेंटर्स हैं, कितने आपका कारोबार देश विदेश में चल रहा है, इतनी आपकी समर्पित बहनें हैं, आप कैसे ये सब मैनेज करते हैं, कैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, थोड़ा हमें भी बताएं। तो दादी ने तो पहले तो हल्का कर दिया, दादी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, ये सब जो और बड़ी बहनें बैठी थी या जो मीटिंग चल रही थी उसमें वो आए थे, तो दादी ने कहा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सब ये लोग करते हैं, सब ये लोग करते हैं, यही सब करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। तो वो अखबार वाले हैरान हो गए, ऐसे कैसे कि आप कुछ भी नहीं करते और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो। तो दादी ने फिर बताया, सारा समझाया कैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे हमारे सेवा केंद्र हैं, कैसे हमारे सब सेंटर्स हैं, फिर गीता पाठशालाएं हैं और फिर जोन्स है, फिर मधुबन है। तो कोई भी बात होती है पहले उनके सब जोन में जाती है, फिर सब जोन से जोन में आती है, फिर जोन से फिर हेडक्वार्टर्स में आएगी, ऐसे सीधा हेडक्वार्टर्स में नहीं। तो इसलिए ये सब संभालने वाले बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे चलता है ये फिर दादी ने इतना स्पष्ट किया, इतना बताया, वो लोग हैरान हो गए। इतनी बड़ी संस्था ये दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है, कितने इनके सेंटर, रिट्रीट सेंटर सब खुलते जा रहे हैं, बड़े बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं, गवर्नमेंट से उनको जमीन मिलती जा रही है, ये सब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बाबा कर रहा है। क्या कहेंगे, बाबा कर रहा है। और सचमुच जो हमारी दादियां एडवांस पार्टी में गई है, वो तो अभी शक्तिशाली होगी आत्माएं, सत्युगी दुनिया की स्थापना में उनका कितना बड़ा इस समय योगदान होगा। कई कहते हैं कि दादियों ने तो जन्म ले लिया, तो क्या वो 85वां जन्म होगा, हम कहते 85वां जन्म नहीं है, 84वां ही जन्म है, लेकिन वो प्लस जन्म है, 84 में प्लस। कई बार होता ना, बड़ी बिल्डिंग होती है फिर उसके बाजू में छोटी छोटी बिल्डिंग बना लेते उसी प्लॉट के अंदर ही, तो वो कोई दूसरा प्लॉट थोड़ी हुआ उसमें, वो जमीन का वो उसी के अंदर ही है। तो ये 84 जन्म के अंदर ही है, पर उनका अलग कार्य है, एडवांस पार्टी का अलग कार्य है, प्रकाश देने का कार्य है, बुद्धियों को टच करने का कार्य है। तो ये कैसे सब दे रहे हैं, उनकी बुद्धि को कौन टच कर रहा है, बाबा टच कर रहा है, दादियां टच कर रही है। सचमुच हम देख रहे हैं विदेशों में भी इतने सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, इतने निमंत्रण मिलते जा रहे हैं, भारत में हमारी बहनों को कैसे अवार्ड्स मिल रहे हैं, मन न चित सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक संस्था आती है आपको हम अवार्ड देना चाहते हैं। बाबा कहते थे पहले आप उनको बुलाते थे अपने पास प्रोग्राम करने के लिए, अभी वो आपको बुलाते हैं प्रोग्राम करने के लिए। तो देखो ये कौन कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप वारिस बनाओ, वो आपके लिए कहे, आप माइक बनाओ, वो आपके लिए कहे, आप न कहो, आपकी वो महिमा करे, आप अपनी महिमा न करो। लेकिन ये तब है जब इतनी दुआएं मिल रही है, और वो दुआएं किस आधार पर मिल रही है, हमारे जीवन के परिवर्तन को देख करके दुआएं मिलती है ना। कई कहते हैं ना, आप तो बदल गए हो, कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि पहले मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मैं बड़ा ऑफिसर था, मैं ऑफिस में जाता था, सब कांपते थे, सब डरते थे, थर थर होते थे, साहब आ गए, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा बहुत था, ये क्यों, मतलब नुक्स ही निकालता रहता था, और इंसल्ट करने में भी देरी नहीं करता था। लेकिन जैसे मैं बाबा का बच्चा बना, उसके बाद मेरे अंदर परिवर्तन आया, मेरे अंदर शांति आई, मेरा गुस्सा कम हो गया, और अभी तो इतना प्यार प्रेम से सब मिलते हैं। पहले तो डरते थे, सांप के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या बोल देगा, क्योंकि हरेक को अपना स्वमान प्यारा है, क्या बोल देगा। लेकिन अभी खुशी से जाते हैं, क्यों, उनको पता है कि सांप नाराज नहीं होंगे। तो ये परिवर्तन जो है, ये भी तो दुआएं है ना, कि सांप नाराज नहीं होंगे, ये भी दुआ मिल गई ना। नहीं तो पहले ये नाराज न हो जाए, ये भी बद्दुआ हो गई, नाराज न हो जाए, ये बद्दुआ हुई ना। तो कैसे हम दुआएं लेवें, मांगनी नहीं है, पर दुआएं लेने के लिए वो हमारी स्थिति चाहिए, सेवा की भावना चाहिए, समय देना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो ये सब जब हमारे अंदर हो तब दुआएं हमको मिलेगी। और दुआएं देंगे कैसे? जब हम अपने स्वमान में रहेंगे, बस स्वमान से नीचे नहीं आओ, स्वमान में के अंदर रहो और मुझे देना है ये भावना रहे। क्योंकि हम कौन हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में हम भगवान के मददगार हैं। और इतनी अब एक एक जो भी स्वमान है बाबा ने दिया, टाइटल दिए हैं, अब उसके ऊपर जरा गौर करेंगे तो लगेगा कि कितने ऊंचे हैं हम, लेकिन छोटी छोटी बातों में हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। ये क्यों नीचे आ जाती है स्थिति हमारी? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं। इसलिए दादी जानकी जी कैसे सदा इस स्वमान में रहती थी, जब कहती थी ना ओम शांति तीन बार, तो फिर साथ में क्या कहती थी? तीन बार ओम शांति कहकर, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो बस ये कितना बड़ा स्वमान है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो मेरी ड्यूटी, बाबा इतना निर्माण होकर के अपनी ड्यूटी बताते, मेरी ये ड्यूटी है पतितों को पावन करना, मेरी ये मेरा ये फर्ज, यहाँ तक बाबा कहते हैं। पर हम अपने अभिमान में रहेंगे तो बाप समान कैसे बनेंगे? तो बाप समान बनने के लिए इतना ही निर्माण बनना पड़ेगा, और निर्माण बन करके सबको दुआएं देनी होगी, तुम्हारा भी भला हो। हाँ, तुम्हारा भी भला हो, कर भला तो हो भला, ये सदा याद करो। कोई भले कितना भी बुरा करे, मुझे बुरा नहीं करना है, और अगर बुरा किया तो चलो हिसाब किताब पूरा हो गया, खुशी होनी चाहिए हिसाब किताब पूरा हो गया, चिंता नहीं करते। वो बाबा को दे दी चिंता, परंतु दुआएं निकलेगी, चलो इसका भी हिसाब, ये भी हिसाब किताब पूरा हुआ। जैसे मेरे सिर पर ऋण था, वो ऋण चुकत हो गया, ऋण चुकत हो गया तो दिमाग ठंडा हो गया ना। 63 जन्मों के हिसाब किताब है हमारे सिर पर। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए, आपके मुख से कभी पत्थर न निकले, हमेशा ज्ञान रत्न निकले, सबको जागृत करने के महावाक्य निकले, वो वरदान बन जाएंगे। तो वरदान कौन दे सकता है? जो भरपूर होगा। भगवान तो वरदान देता ही है, पर हम भी दे सकते हैं वरदान ना। कई आते हैं, कहते हैं बहन जी एक वरदान दो। अब उस समय मन में तो कुछ न भी आता हो, पर एक वरदान तो सदा मुख से निकल ही जाता होगा, खुश रहो खुश रहो। भगवान खुशी का वरदान हमको हर वक्त देते हैं। दादी गुलजार बहुत प्यार से कहती थी, क्या कहती थी? हाँ, बहुत सुंदर बात कहती थी कि शरीर छूट जाए लेकिन खुशी न जाए, ये वरदान दादी जी सदा सबको देती थी। क्योंकि शरीर छोड़ना भी बड़ी बात नहीं है, दूसरा अच्छा शरीर मिल जाएगा, पर खुशी अगर गई तो सब कुछ गया। और खुशी कैसे कायम रहेगी? जब उस स्वमान में हम स्थित रहेंगे, और स्वमान में स्थित रहेंगे तो सबको सम्मान देंगे, और सबको सम्मान देना माना उनको दुआ करना, तो उनका उनका फल हमें भी मिलेगा, हमें भी, हम भी दुआओं से भरपूर हो जाएंगे। तो खुद को भी दुआ दे सकते हैं, नजर नहीं लगानी अपने ऊपर, पर दुआएं जरूर दें अपने आप को। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, ये अपने आप को दुआ देना है। हाँ, मैं बीमार न हो जाऊं, मैं ये न हो जाऊं, वो न हो जाऊं, ये भी अपने आप को बद्दुआ देना है। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, जरूर ठीक होंगी। तो उस पॉजिटिव सोच में हम अपने लिए भी रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप ये सोचते मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमार हो जाएंगे, हो जाएंगे। कई होते हैं ना, मेरे पेट में दर्द है, बहाना देना है, मेरे पेट में दर्द है किसी को, भाई वो काम नहीं करना है या वहां जाना नहीं है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है। तो दादी गुलजार हंसी में कहती थी, अब थर्मामीटर तो है नहीं जो पता चले कि सिर में दर्द है या नहीं है, पेट में दर्द है ये कैसे पता चले दूसरे के पेट में दर्द है, कैसे मापेंगे, कोई माप तो सकते नहीं ना। तो ये कहती थी ये बहाने बहुत 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 देते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, तो हो जाएंगे, इसीलिए ऐसा सोचो ही नहीं। मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा, कईयों को अनुभव होगा, क्योंकि कहा और हो गया, अब वो कई बद्दुआ बन गई हमारे लिए। तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव किसी के लिए भी, अपने लिए भी नहीं सोचना है। तब कहेंगे कि हाँ हम दुआ देते हैं और दुआ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा भी नेगेटिव आया चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, वो बद्दुआ का रूप बन जाएगा, वो उसके लिए नहीं होगा, वो मेरे लिए खड्डा हो जाएगा जो हम ही गिरेंगे। तो क्यों ऐसा कर्म भी हम करें, इसीलिए हर कदम पर अच्छाई सबके लिए सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, पॉजिटिव ही हो। तो मनसा वाचा कर्मणा, हम दुआएं देते रहें, अच्छा सोचते रहें, सकारात्मक सोचते रहें, तो ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती जाएगी। हाँ, पहले कहते थे बाबा कहते हैं, तो पहले हम लोग थोड़ा नेगेटिव थे, ब्रह्मा कुमारियां, हम कहते थे विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। तो लोग क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश ही करती है, विनाश विनाश ही कहती रहती है। फिर बाबा ने कहा, नहीं अभी ऐसे नहीं कहो, अभी कहो कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, सत्युग आएगा, सत्युग आएगा। तो ये खुश होते हैं सुनकर के, सत्युग आएगा, कलयुग का विनाश होगा ये पसंद नहीं करते हैं, है ना ऐसे। लेकिन कहना तो पड़ेगा ना विनाश होगा। तो हम भी जब शिविर कराते ना, पहले हम ऐसे कहते हैं, सत्युग आएगा, दूध घी की नदियां बहेगी। आज भारत की कितनी महिमा की बाबा ने आज की मुरली में, भारत की महिमा, हाँ भारत क्या था, भारत क्या था। तो ये महिमा की बना, इतना पॉजिटिव भारत के लिए का। तो हम शिविर में ये सुनाते हैं कि भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से दूध घी की नदियां बहेगी भारत में, तो सब तालियां बजाते हैं। विश्व गुरु बनना है, तो ये सब हो तो रहा है ना। तो दूध घी की नदियां तो बहेगी, जरूर बहेगी भारत में, फिर उसमें खुश हो जाते हैं। फिर उनको कहते हैं लेकिन लेकिन क्यों कहते हैं, तो हम कहते हैं लेकिन दूध घी की नदियां बहने के पहले रक्त की नदियां भी बहेगी। तो फिर बेचारे मायूस हो जाते हैं कि रक्त की नदियां भी भारत में बहेगी, बाबा कहते हैं मुरलियों में, पर ये रक्त की नदियां भी कल्याणकारी होगी। क्यों कल्याणकारी होगी, क्यों कल्याणकारी होगी, क्योंकि जमीन को भोजन मिलेगा, जमीन उपजाऊ बन जाएगा, तभी तो सतयुग में खूब खूब जमीन इतनी उपजाऊ होगी। पर पहले उनको धरती का, धरती में खून चाहिए। तो रक्त की नदियां बहेगी, सबके हिसाब किताब चुकतु होंगे। कई पूछते इतना पाप का, पाप इतना क्यों बढ़ रहा है, आप लोग तो कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो भी दुनिया में कितना पाप क्यों बढ़ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, ये पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा ना, तभी तो हम जो अच्छा कर रहे हैं उसका फल मिलेगा सबको, नई दुनिया तभी तो आएगी। पहले पाप का घड़ा भी तो भरना चाहिए, कलयुग का तो अति आकर अंत आएगा जरूर, लेकिन एक नई कलम लग रही है, ये नई कलम फिर विश्व को स्वर्ग बनाएगी। तो इसलिए हम नकारात्मक नहीं कहते हैं, हम सकारात्मक कहते हैं कि फिर से सतयुगी दुनिया आएगी। इसलिए अच्छी बातें जो कहते हैं ये भी सबको दुआएं दे रहे हैं। तो दुआएं दे रही देंगे तो वो भी दुआएं देंगी। अभी अभी क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले तो इतना डरते थे, अरे ब्रह्मा कुमारियों का वो टोली भी नहीं खाना, उसमें भी जादू है, उनकी आंखों में भी कभी नहीं देखना, वो आपको जादू लगा देगी, ये ऐसे तक थे। और अभी क्या करते हैं, आइए इतना रिस्पेक्ट से बुलाते हैं और वो इंतजार करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां हमको निमंत्रण दे तो हम उनके पास जाएं। बड़े लोग भी ऐसे ही। तो इतना परिवर्तन किस आधार पर आया, हम दुआएं सबको दे रहे हैं, हम दुआएं सबसे ले रहे हैं, यही कार्य सदा करते रहना तो दिन दुगनी रात चौगनी गति से बाबा का कार्य और बढ़ता जाएगा और एक दिन बाबा की प्रत्यक्षता होकर ही रहेगी। ठीक है, चलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति जी। मेरा अनुभव, हर की पौड़ी का अनुभव, ओ हर की पौड़ी का अनुभव पूछ रहे हैं। वास्तव में क्या था, ये बाप दादा का वरदान था। एक मिनट भैया सफेद लाइट कर लूं। ये बाप दादा का वरदान था कि क्योंकि मैं विदेश में सेवा कर रही थी, तो विदेश अफ्रीका मॉरिशियस वहाँ सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने थे, तो वो सेवा करके मैं मधुबन में आई थी। और जैसे मधुबन में आई तो 76 की बात है, 76 77, तो वो उस समय की बात है। तो मैं मधुबन में रह, दादी जी ने मुझे कहा था कि अभी विदेश में बहुत सेवाएं हो रही है और यहाँ कोई ऐसी बहन चाहिए जो विदेशियों की सेवा मधुबन में कर सके, ट्रांसलेशन करना, क्लासेस कराना, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई था नहीं। कोई बाबा तो साकार में टीचर्स को, बहनों को रखते ही नहीं थे मधुबन में, इसलिए नाम ही रखा पांडव भवन। लेकिन जब दादी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और विदेशों में सेवाएं शुरू हुई, तो उस समय विदेश में सेंटर्स खुले और वो मधुबन में आने लगे। हमने भी विदेश में सेंटर्स खोले। तो फिर वापस जब आए हम, तो दादी जी ने मुझे कहा कि अभी आपको मधुबन में रह करके विदेशियों की सेवा करनी है। और राजयोग भवन बना था जहाँ राजयोग शिविर कर सकते, क्योंकि पांडव भवन में तो नहीं रहेंगे नॉन बीकेज, वो यहाँ तो केवल बीकेज ही रहेंगे पांडव भवन में। तो राजयोग भवन बना था ताकि शिविर हो सके और बाहर के वीआईपीज भी शिविर कर सके। तो अब दादी जी ने मुझे रखा मधुबन में। तो 3 साल तक मैं मधुबन से बाहर नहीं गई, क्योंकि सेवाएं बाहर बहुत की थी। फिर उसके बाद 3 साल मधुबन में ही रही। तो एक दिन मुझे संकल्प आया, क्या मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्या, इससे संकल्प आया मुझे, बाहर नहीं जाऊंगी क्या। विदेश में तो बहुत सेवा करते थे, ये सब कुछ करते थे, हर कार्य करते थे, यहाँ लिमिट हो गई, केवल विदेशियों की सेवा करनी या राजयोग शिविर कराना है, और जो दूसरा कारोबार होता है वो तो नहीं, क्योंकि भाइयों भाई संभालते हैं मधुबन में। तो एक संकल्प जरूर आया। तो एक दिन मैं बाबा के सामने जब गई, अव्यक्त बाप दादा के सामने गई, तब बाबा ने मेरे से पूछा, क्योंकि ज्ञान ही सुनाना यही कार्य था मेरा, तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा, बाबा मैं ज्ञान गंगा हूँ, मैंने जो गाड़ी बाबा ने दी उसके पीछे भी ज्ञान गंगा नाम लिखाया था ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा, ज्ञान गंगाएं तो सब है, सब टीचर्स ज्ञान गंगाएं हैं, कितने कितने अच्छे भाषण करती है, सब ज्ञान गंगाएं हैं। बाबा ने कहा, आप कौन सी गंगा हो। तो मुझे फिर दूसरा गंगा कौन सी होगी, तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, मैंने ये कहा बाबा को। फिर बाबा ने कहा, नहीं बहती गंगा तो वो है जो सेंटर पर रहती है, क्योंकि उस समय तो ये था कि आज इस सेंटर पर हम रह रहे हैं, 1 साल के बाद सेंटर चेंज हो गया, फिर बहन का सेंटर चेंज हो गया, फिर कितने सेंटर्स पर वो बहनें रहती है, पर स्टूडेंट्स तो वहीं के वहीं हैं। तो वो बहती गंगा एक सेंटर से ट्रांसफर हुआ दूसरे सेंटर पर, दूसरे से ट्रांसफर हुआ तीसरे सेंटर पर, तो वो जो सेंटरों पर रहती है वो बहती गंगा है टीचर्स। आप कौन सी गंगा हो। अब तीसरी गंगा तो मुझे आई नहीं नाम। तब बाबा ने मुझे कहा, तुम हर की पौड़ी की गंगा हो हर की पौड़ी की गंगा माना, हर की पौड़ी की गंगा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भले बहती है गंगा लेकिन हर की पौड़ी का महत्व है। हर की पौड़ी का जो स्थान है हरिद्वार में, उस स्थान का महत्व है जहाँ सारी दुनिया आकर के नहाती है। सबका मुख्य स्थान जो हरिद्वार में है वो हर की पौड़ी का ही है, तो इसीलिए तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, सारी दुनिया तुम्हारे में नहाएगी, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया, ठीक है ना। चलो ओम शांति।